محمد صلى الله عليه وسلم كريم بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مريم ابن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مريم ابن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مريم وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عظیم بابرکت رات میں ہم سب کو اپنے ذکر کے لیے بٹھا کر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے, بہت ہی بڑا احسان کیا, اتنا بڑا احسان ہے کہ زبان سے کچھ لفظ صادر نہیں ہو سکتے, پورا جسم زبان بن جائے تب بھی اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. اور الحمدللہ کچھ دیر ذکر کے ساتھ فکر کی توفیق بھی عطا فرمائی کہ ہم اپنے حالات کو جانچ پڑتال کریں. مادی زمانہ ہے, سائنسی زمانہ ہے, مہلت کہاں ملتی انسان کو, پورا ہفتہ غور کریں تو بہت مشکل ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وقت ملا ہو بیٹھ کے اپنے حالات کا خود تجزیہ کریں کہ ہم کتنے نیک ہیں, زندگی کتنی رہ گئی ہے, ہمارا قبل میں کیا حال ہوگا, کوئی ہمارے پاس ایسا عمل ہے یا نہیں ہے, کس طرح بخشش ہوگی, کیسے کیسے گناہ ہمارے سے ہو رہے ہیں, وہ اتنے گناہ ہیں کہ دنیا نہیں جانتی, رب جانتا ہے ہمارے گناہوں کو, بات نے ہمارا غلیظ ہوا ہوا ہے, موقع نہیں ملتا اس بات. تو جب اللہ جمع کرا دیتا ہے آپ جیسے نیک انسان بیٹھتے ہیں تو میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ ہم بیٹھ کے ایسی باتیں کریں جس سے ہمارا کوئی تجزیہ ہو ہمارا, اور اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے جب انسان ایسی فکر کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں نیک بننے کے, جنت میں جانے کے. ورنہ تو دوستو کیسے ہی ہوگا, کسی نوعیت کا ہو, چھوٹا کہہ دیتے ہیں اس کو لیکن چھوٹا ہے کوئی نہیں گناہ. گناہ کی خاصیت یہ ہے تو چپک جاتا ہے انسان کے ساتھ, دو ہی صورتیں اس کے الگ ہونے کی, یا اللہ فضل کرا دے وہ کرم کر دے تو توبہ سے ختم ہو جاتا ہے گناہ, یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ مہلت ہی نہ ملے انسان کو تو پھر وہ گناہ جو ہے یا اس کو سمجھنے میں گناہ بھی ہے, وہ گناہ سمجھ ہی نہ اس کو, یہ بھی بہت خطرہ ہے نا آج کل. جی کیا گناہ ہے, ہم تو کوئی گناہ نہیں کیا, یہ سب کرتے ہیں, جب ہم نے کر دیا تو کیا ہو گیا, ہوتے ہیں جی وہ بھی تو کر رہے ہیں, دیکھیں یہ کوئی بات نہیں, ساری دنیا کر رہی ہے, ہم نے یہ کر لیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تو گویا مختلف واضح طور پہ اس کو ڈکلائن کر دیا اس نے, تو گناہ ختم تو نہیں ہوتا. ایسے گناہ جب ہوتے ہیں انسان کے جسم پہ تو پھر وہ دوسرے انتظام اللہ نے کیا ہے, وہ جہنم کی آگ ہے, اس سے ان گناہوں کو دھویا جائے گا, اللہ اس سے ہمیں محفوظ کرے, اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کو یہیں ختم کریں. گناہ کبیرہ جس کو کہا جاتا ہے بہت بڑا گناہ, رزگان دن کماتے ہیں کہ کبیرہ سے بڑا کبیرہ گناہ ہے, بلکہ یہ سمجھیں کہ گناہوں کی ساری جڑوں سے ہی مٹتی جائیں گے, وہیں سے لوپ اٹھتی ہیں تمام گناہوں کی, اور وہ گناہ ایسا ہے کہ शैतान मालूम जिसका मिशन ये है कि मुझे आराम ही नहीं आता, मेरा पेट ही नहीं भरता जब तक बंदे को मुकम्मल तौर पर जहन्नम की आग की तरफ ना ले जाऊं, घरों को बर्बाद ना कर दूं, फितना फसाद पैदा ना कर दूं, इनको किसी किस्म का मौका ना दूं कि ये अपने आप को सलाह कर सके, उस वक्त तक मुझे जो है करार नहीं मिलता शैतान के अंदर। तो उस मलून का सबसे बड़ा हथियार यही गुनाह है। इस रस्ते से आते इंसान में, और बड़े मौजत से अर्ज करूंगा कि शायद इस जमाने में किस गुनाह से बचाऊंगा, इतना बड़ा गुनाह है। किसी ना किसी रंग में यह गुनाह चिपका है हमारे साथ। भाई वो क्या गुनाह है? अल्लाह की रहमत से मायूसी, अल्लाह के रहमत से मायूसी, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कबीरा है, बड़ी अजीब गुनाह है। कभी तस्लीम नहीं करूंगा मैं अल्लाह की रहमत से मायूस, कोई तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन उसके एक्शन बता देंगे कि बिल्कुल मायूस है, उसकी हालत बता देते हैं बिल्कुल मायूस है। अल्लाह की किताबों में लिखा जाता है कि बिल्कुल मायूस शख्स है, और वो शख्स जो मायूस है वो गुनाह कबीरा का मर्तकब है। क्यों? कि जितने भी गुनाह होंगे सारे उससे सरजद हो, इसी वजह से होते हैं इंसान से कि अल्लाह की रहमत से मायूस है। जब बंदा कोई मायूस हो जाता है अल्लाह की रहमत से, तो अल्लाह से कंप्लीट तौर पर दूर हो जाता है। इतना दूर कर देता है इस मायूसी के साथ शैतान, दूर करते 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 उसको मुशरिक और काफिर बना देता है। जितने भी अल्लाह को ना मानने वाले लोग हैं दोस्तों, उनके पीछे गुनाह यही है कि अल्लाह के साथ से मायूस हो चुके हैं। जब अल्लाह की रहमत से इंसान मायूस हो जाए, उसकी फजल से मायूस हो जाए, बस फिर वो खत्म हो जाते हैं। क्या निशानी इसकी मायूसी की देखें आप, हर गुनाह इसी से होता है। मायूसी ये है अल्लाह की रहमत से कि शैतान उसको मायूस करता है, और मायूस कैसे करता है कि तेरा कोई बड़ी बारिश आई नहीं, तेरा बनेगा क्या, कुछ बनने नहीं तेरा, तेरा जो काम नहीं चल रहा ना, तो तुम्हें कितनी दुआएं मांगी, होना नहीं ये काम, तो इस तरह करने इस तरीके से कर ले इस काम को, किस्सा खत्म हो जाएगा, फिर बाद में देखी जाएगी। और वो इंसान जो है मायूसी के आलम में वो गलत जराए को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और गुनाहों में डूबता चला जाता है। मिसाल देता हूँ, एक दुकान है जैसे किसी की दुकान है, माल वाल डाला, अभी हम नई दुकान खोली, ये चल रही, लाख कमा रहे हैं। अब ये एक सूरत है जबरदस्त, उस पर क्या होगा, मायूसी तो ये होगी ना भाई, दुआएं कराया सब कुछ है लेकिन दुकान वहीं जमी हुई है, ग्राहक कम आ रहे हैं, अब वो मायूस हो गया। ये एक मिजाज है सारी मामला तो होते। अब जब वो मायूस हुआ तो शैतान ने उसको मशवरा दे दिया कि भाई तो, अब देखिए तो बड़ा मुश्किल काम है, तेरी दुकान चल नहीं रही, तो ये तो उधार चढ़ेगा अपना चढ़ेगा, तो अब इस तरह करना किसी बैंक से लोन ले ले। बात तो सही है, बैंक से लोन ले लेते हैं। अब मुझे सूद के नजर हो गया, वो समझता है कि सूद ले लूंगा तो मेरी दुकान चल पड़ेगी। उसने उसको यकीन दिलाया शैतान ने, उससे कर्ज ले ले, कौन से बाद में देखी जाएगी कर्ज लेने की, वो कर्ज में डूब गया। ये सारी चीजें जो कर रहा है किस हाल में कर रहा है, मायूसी, और मायूसी क्या दिलाया कि तेरा आई नहीं बड़ी बारस, कौन तेरे इस मामला को सही करेगा, पकड़ कौन चलाएगा तेरी दुकान, कहाँ से तेरा रिजक आएगा, तो बहुत बुरा हाल ना था तेरे। सारे गुनाह जितने भी होंगे इस मायूसी के अंदर इंसान आगे करता है, याद रखना। सारे गुनाह की बेसिक जो मामला होगा ना, उस वक्त जब अल्लाह को बिल्कुल वो कहेगा तेरा कुछ कर ही नहीं सकता, अल्लाह कहां करता है भाई, कुछ नहीं होता, कहेगा नहीं, लेकिन लाशूर में ये बात डूब जाती है उसकी, तभी उस जाकर मदद लेता है। बुतों से उम्मीदी, खुदा से ना उम्मीदी, तो फिर काफरी और क्या, मुझे बताएं। अल्लाह से बिल्कुल मायूस है ही नहीं अंदर, तो होता तो इतना काम, तो दुआएं मांग रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन दुकान तो तेरी चल नहीं रही, छोटे गुनाह हो गया। अब सारे गुनाह जो है पीछे जाए, आप उन गुनाहों के पीछे यही मामला होगा कि गुनाह इंसान करता उस वक्त जब वो पता चल जाता है मेरा पीछे आश्रय नहीं, मेरे सर पे कोई है ही नहीं, देने वाला ही कोई नहीं, अल्लाह सब चीज से उसे फारिग कर देता है, वो गुनाह उठे उन रास्तों का अख्तियार कर लेता है जिन रास्तों को अल्लाह ने मना किया है, जिस हालत में परेशानी में है, परेशानी बचने के लिए उसमें इतना मेरी मदद तो होगी नहीं, कहीं से अल्लाह कहाँ मदद करेगा मेरी, कर देता तो फौरन मशवरा दिया जाता है शैतान को, तो ये रास्ता अख्तियार करना तेरी परेशानी दूर हो जाएगी, वो रास्ते अख्तियार कर लेता है जो गैर शरीय है, जिससे अल्लाह ने मना किया है, इस से भी मेरा काम यहाँ से चल जाएगा, पर गुनाह में चला जाता है। फितना फसाद हो गया, घर के अंदर कोई झगड़ा हो गया, बाहर कोई झगड़ा हो गया, मायूस हो गया कि मेरा मसला कैसे हल होगा, शैतान ने फिर मशवरा दे दिया उसको, और मशवरा देते देते कत्ल वगारत तक ले जाता है। समझ में आता मसला क्या हुआ कि सारी बात जो चलती है किसे चलती है, अल्लाह की रहमत से जब बंदा मायूस हो जाता है, इसलिए गुनाह कबीरा है, सब गुनाहों की जड़ है। सवाल ये पैदा होता है इस गुनाह से कैसे बचा जाए, क्या चीज अल्लाह ने इसके मुकाबले रखी है कि जिससे इंसान इस मायूसी से निकल जाए, ताकि जब अल्लाह की रहमत से मायूसी उसकी खत्म होगी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर क्या होगा, गुना खत्म होगी उसके, तो इसके लिए क्या चीज है कि हम गुनाहों से बच जाए, मायूस ना हो इंसान। मेरे भाई इसके लिए एक चीज है बड़ी जबरदस्त और बड़ी मिसालें हैं कुरान में, इसकी नबी पंग पूरी जिंदगी हयात मुबारक मिसाल देती है, इसकी सहाबा कराम की सारी जिंदगी इसकी मिसाल देती है। आपने देखा, हम तो जानते हैं हिस्ट्री बताती कि कैसे कैसे दौर से सहाबा कराम की जिंदगी गुजरी है, नबी पाक की जिंदगी कैसी, वाज़ा एक चीज थी उनके पास, तो वो क्या था, मायूसी के मुकाबले में जो चीज है वो क्या है, तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह पे तवक्कल, जहां तवक्कल होगा वहां मायूसी नहीं होगी, जहां मायूसी होगी वहां तबक्कल हो ही नहीं सकता, दो चीजें चल सकती, दुकान नहीं चल रही, मायूसी गिर रही है, चलेगी नहीं, और क्या चीज काम आएगी, अगर तबक्कल होगा, यार अल्लाह तो भरोसे है, मैं गलत काम क्यों करूं, मैं सूद क्यों उठाऊं, मैं फला काम क्यों करूं, मैं तो नहीं करता, चले या ना चले, सुबह कुछ देर रहती है चीज कैफियत, मैं आपको सही बता रहा हूं, कुछ देर इम्तहान रहता है, अल्लाह की रहमत ऐसी है कि बर्दाश्त करते ही नहीं कि ऐसा इंसान तवक्कल वाला खड़ा हो, उसकी रहमत में बारिश ना शुरू हो जाए, कि है ही नहीं, मिलती नहीं ऐसी भी मिसाल। फिर उनकी जो अहलियत थी ये भी आसिया, उन्होंने अपना ईमान छुपाया हुआ, पता चल गया कि भाई ये तो मुसलमान है, ईमान रखती है, बस शुरू हो गया, फिर था वो तो फिर उसने पकड़ लिया, सजा इतने लगा, एक औरत को सजा, कितनी बड़ी सजा थी कि उनके जिस्म के ऊपर मेखी थी वो ठोकता था जिस्म, कहता तुम्हें मान ला तो मुझे मानती है, खुदा नहीं मानती, तो बीबी आसिया एक लफ्ज कहती थी कि बात यह है कि तू मेरे जिस्म पे तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मेरे दिल पे कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिल की हिफाजत मेरा रब कर रहा है। हसमूस रस्म का गुजर हुआ वहां से, हालत देखी, तो बीबी आसियान से गोया हुई, कहा कि मुझे एक बात तो बता, تو پیغمبر اللہ کا نبی ہے, یہ تو پوچھ کے بتا دے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا راضی. انہوں نے کہا کہ اللہ تو اتنا راضی ہے کہ تیرا تو انتظار کر رہے, پورے آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تیرے پہ فخر کر رہا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ آسیہ سے کوئی دعا مانگ, میں تیری دعا کو قبول کروں. تو بی بی آسیہ نے دعا کی, یا اللہ ان سالوں سے میری جان چھوڑا جنہوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے, اور جنت میں میرا محل جو ایسا دے جو تیری رحمت کے سائے کے نیچے ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. تو واقعات میں یہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دروازے کھولے, اور جب ان پہ تکلیفیں دی جاتی تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ محل ان کے سامنے کر دیا جس کے لیے دعا کی تھی, ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی. تو میرے بھائیو, جب توکل آدمی کر جائے اور سمجھ جائے کہ اس کا علاج وہاں ہے, کہ یہ میں نے اگر اللہ کی بات نہ مانی ہے اور قانون توڑ دی اللہ کے, جس کو اس نے حرام کہا میں حرام راستے پہ چلا گیا, اگر مجھے بھوک پیاس جو کچھ بھی ہے, پریشانی ہے, مصیبت ہے, کسی قسم کا بھی میرے ساتھ معاملہ ہے, لیکن اللہ کے قانون اور شریعت کے بغیر میں نے یہ قدم نہیں اٹھانا, میں یہ کام نہیں کروں گا, توکل پہ جم جائے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان پر. در بدر بھاگا نہیں کرتا آدمی روٹی کے لیے, غلط کام نہیں کرتا, حرام نہیں کماتا, پوری طرف نہیں چلتا, پریشان ہوتا نہیں ہوتا, اور سب کچھ مایوس کرتا ہے جب اللہ کہ تیرا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے پہ تو ہاتھ ہی کسی کا نہیں. اور توکل کیا سکھاتا ہے کہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے, گھبراتا کیوں ہے. بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, واقعی کتنا زبردست, ایک خاتون جنگل بیابان, سوچیے جناب تو خاتون تو مجھے اٹھا گئے ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیا جائے, اندھیرا بو, نہ کھانے کو نہ پینے کو, ہائی درجے کا ٹمپریچر, پہاڑ جنگل ریگستان, اور ایسا جانوروں کی آوازیں آ رہی, شیروں کو چہڑنے کی آوازیں آ رہی, جانوروں کی عجیب عجیب رات کو آوازیں نکل رہی وہاں سے, اور پورا حال ایک خاتون نازک, ایک بچہ دودھ پیتا ہوا, اور اس کا خاون اٹھائے اس کو چھوڑ دے, بس چھوڑ کے چلنے لگے, ساتھ میں اپنا اونٹ بھی لے جائے جس والے سے بھی چلنے لگے. اس عورت کا کیا حال ہوگا, نہیں پتا ہے, یہ ہسٹری مثال ملتی ہے اس کی. دیکھیے اللہ نے کیسی مثال دی, جیسے سبحان اللہ, توکل کی مثال دے گی. مایوسی ہوگی یا نہیں ہوگی, پریشان ہوگا نہیں ہوگا آدمی, گھبرائے گا نہیں آدمی, پریشان نہیں ہوگا کیا میرا بنے گا کیا, میرا چھوٹا بچہ ہے نہ میں کھلا سکتی ہوں نہ میں تو رہ سکتی ہوں, ہمیں تو ابھی جانور کھا جائیں گے. تو خاون چل پڑا, بات تو سنو, کچھ جواب تو دو, آخر ہے کیا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, کوئی جواب نہیں, پیچھے پیچھے چل رہے کوئی جواب نہیں. اچھا ایک جواب مجھے بتا دو, اپنے شوہر سے کہتے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو, میں یہاں چھوڑ رہے ہو, میرے اپنے بچے کو چھوڑ رہے, بیوی کو چھوڑ رہے, کچھ بھی نہیں ہمارے پاس, اپنی مرضی سے کرو یا اللہ کی منشا سے کر رہا ہوں. بس ایک جواب کہ اللہ کی منشا سے کر رہا ہوں. اور تو خاتون کیا جواب دیتی ہے اس ماحول کے اندر, کہتا پھر ٹھیک ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, جاؤ مجھے کوئی فکر نہیں تمہاری. یہی وہ توکل کی ادائیں ہیں الحمدللہ, جو آج قیامت تک ہم جا کے اس پہ طواف کرتے ہیں, الحمدللہ نشانی ہے. دیکھ صف مروا توکل کی نشانی, آب زمزم توکل کی نشانی, جو خود خانہ کعبہ ان کی توکل کی نشانی اللہ نے جمع کر دیا قیامت تک کے لیے. دیکھا توکل, اور دوسری طرف کیا تھا, مایوسی تھی, دماغ تھا مایوسی تھی, ہم جائیں گے کہاں, کھائیں گے کہاں, پہنیں گے کہاں, کدھر سے ہوگا کیا, سوچا ہی کچھ نہیں. جانوروں سے بچانے والا کون ذات ہے, اندھیروں میں روشنی پیدا کرنے والے ذات کون ہے, اللہ. اس جگہ کو اللہ نے بنا کیا دیا مجھے بتایا, سوچا دنیا کے محور مرکز بن گیا, جو دنیا میں آپ کو پھل نہیں ملے گا اس جگہ سے مل جائے, اللہ दीवानावान लोग पहाड़ों पे, उस पहाड़ी दो पहाड़ी पे घूमते हैं इधर से उधर, और कितने महसूस होते हैं, नूर और नूर होता है इंसान जब उस पहाड़ी पे घूमता है, क्योंकि एक ऐसी खातून का कदम चले उस पर जिसने अल्लाह पे तवक्कल किया था। कभी हम ये भी तो सोचते चलते हुए पहाड़ों पर सफा मरवा करे, कभी किसी सोचे उम्र हाजी ने उम्र ने कि भाई चल क्यों रहे हम यहाँ, अगर ये सोच के आए कि हम इसलिए चले तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जिंदगी बदली हो, फिर उनकी जिंदगी में गुनाह नहीं रह सकते। अगर तवक्कल आ जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता इंसान की जिंदगी में, तवक्कल हो लेके नहीं आते, वो सारा तवक्कल ही तवक्कल है, वो दबाव तवक्कल है, तवक्कल है, जिस नजर में माने आप निशानी ये पेश करते हैं कि तो याद है किसी जिसने अपने रब पे तवक्कल किया था, मुस्बत कर दिया अल्लाह ताला ने उस चीज को। हाजम कहते हैं हमसे ये गुनाह हो जाता है छूटता नहीं, ये गुनाह हो जाता है छूटता नहीं, बदनजरी हो जाती है छूटती नहीं है, क्या करें परेशानी है, हमें तो कुछ गलत चेक भी लिखने पड़ते हैं, गलत ये काम भी करना पड़ता है, ये बच्चों का पेट भी पालना है, ये हमारे सिस्टम नमाज है दोस्तों, कुछ सोच कौन बचा चलो जी सूद भी चलता है कोई बात नहीं, हम तो दिन भी लगा रहे हैं ना इसमें क्या फर्क पड़ता है, चलो जी फला हो रहा है तो ये काम करो इसमें झूठ बोल लेंगे तो क्या हासिल हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं जी कौन देख रहा है, कर जाओ थोड़ी देर उसके साथ इबादतों पे जोर, किस रब को याद कर रहे हैं, किसको सजदा कर रहे हैं, जिसके जिसके मुकाबले अपने नफ्स को हमने खड़ा किया, ये धोखाबाजी चलनी चाहिए धुरंगी छोड़ के या पंग हो जा सरासंग संग या फिर मोंग हो जा, रास्ता ही के अख्तियार करना पड़ेगा दोस्त, जिंदगी गुजारे तो हम एक मोमिन की तरह जिंदगी गुजारे, अल्लाह सुब्हानहू ताला की जो कॉन्वेंट्स जो शरी हदूद हमें दी हुए हैं वो शरी हदूद सारी तवक्कल का दायरा है सुब्हानहू, और रहमतें हैं उसके अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के अहकाम हैं, जो शरी हदूद हैं वो हम पे सख्ती नहीं है, बल्कि क्या है कि उस हदूद के अंदर ठहर गया अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया कुछ भी हो जाए उस हदूद से निकला नहीं तो रहमतों की बारिशें शुरू हो जाती है, सब थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात। ये तो मैंने अपनी जिंदगी में देखी तजुर्बा कि कोई भी नहीं था, अल्लाह ने एक मुसीबत मुझ पर डाली ऐसी मुसीबत जिसका तसव्वुर भी आदमी नहीं कर सकता, मुझ जैसा मुनिम इंसान जो नीचे सी बहुत मिजाज कभी तकलीफों को सोचा ना हो जिस इंसान ने, अल्लाह ही कहता हूं कि एक चीज काम आई वहां। अच्छा देखें ऐसा मुकाम होता है कि शैतान मायूसी करते करते खुद से खुद कोई दुश्मन बना देता है, एक शिर्क कुफर तक तो ले ही जाता है, काफिर तो यही ना वो खुदा को मानते हैं तो कुफर करते, अब उस नजदीक अल्लाह हो अल्लाह पे भरोसा हो तो कुफर करेगा, वो तो उसी से मांगेगा हर चीज, कब्रवार भी उससे मांगेगा, सेहत भी उसी मांगेगा, लेकिन मोमिन की तो शान यही है, हिलेगा नहीं किसी से, इधर से उधर हो ही नहीं सकता, अल्लाह देते हैं। और मैं इतनी मिसालें दे सकता हूं, मांग के देखो गला है तू, अब मैं तो गलत काम तो मैंने नहीं करना, इतने दिन के फाके तेरी मर्जी दे या ना दे, मुझे अपने हजरत का एक खत को पढ़ रहा था जिससे मजबूर मेरे जहन में आया, रोज एक खत पढ़ता हूँ हजरत को, तो उसमें मैंने हजरत से इल्तिजा की, हजरत क्योंकि एक दफ़ा हजरत की ज़ियारत होती थी वो जब हरमैन शरीफ में जाते थे, मैं यहाँ से चला जाता था तो उनका पाकिस्तान से आना, डेराजी खान से आना, गदाई शरीफ से आना, मेरा यहाँ से जाना, वो ज़ईफ इंसान थे उनका यही सफर होता था, तो मैंने हजरत खत लिखे, मैं हजरत ज़ियारत को दिल कर रहे हैं, हजरत का प्रोग्राम है तशरीफ आने का, इस पर रमजान, हजरत का जवाब था, जवाब बड़ा खूबसूरत था, मतलब वो तो तरबियत भी करते हैं ना अपने मशाइख में मुरीदों की, इस तरीके से जवाब में तरबियत भी होती है, कहें आप मेरे हालात तो जानते हैं फारूक साहब, आज भी खत पढ़ रहा था, ना मेरे पास पैसा है, एक चटाई है जिसमें मैं बैठता हूँ, और ना ही आप मेरे देख रहे हो मेरे पास कोई पासपोर्ट है, ना मेरे कोई वसाइल है, ना मैं किसी को जानता हूँ, भाई आप तो उस मुल्क में जाते हैं बड़ी जल्दी आपका पासपोर्ट बन सकते आ सकते हैं, और वक्त भी आपको पता है हफ्ते ही है, तो हालात तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन आप चाहें तो मुझे मदीने की फला जगह पर मिल सकते हैं, और साथ में फिक्र उन्होंने लिखा बड़ा प्यारा था, ये भी बता दी मक्के में ना हो तो फला बाउल उदा के सामने में होता हूँ, मेरे जगह उस पूतरे में बैठता हूँ, 80 साल उसी से पूतरे में बैठे थे, बिल्कुल रुकने जमाने के सामने तशरीफ रखते थे, वहीं सारी जिंदगी मेरी गिरी उस जगह पर। तो वो तो पहली मुलाकात थी, कहते हैं वहाँ मुझे रुकने जमानी के जवानी के सामने देख लेना, वहाँ पर हूँगा मैं या मदीने में जो है अजान की जगह हूँ जिसे बैठता हूँ चार जन्नत के साथ। तो वह फजर से लेकर रात तक होते थे, जब से मुलाकात कर ले हम वहाँ को खाने पीने का ब्रेक था ही नहीं अलहमदिल्ला। तो क्यों आगे जवाब दिया मैंने, इसलिए ये कह रहा हूँ कि फकीर का हर काम तवक्कल पे चलता है। सुभान अल्लाह, नीयत करे बैठा हूँ लेकिन देने वाली जात कौन सी है, अभी मैं पहुँचा नहीं था तो हजरत पहुँच चुके थे अल्लाह की वजह से, जिनके पास पासपोर्ट भी नहीं था, जिनके पास पैसा भी नहीं था, जिनके पास कुछ भी। मेरे भाइयों, कोई अल्लाह का वली ऐसा नहीं हो सकता, वली बन ही नहीं सकता जिसमें तवक्कल ना हो। वो वली कैसे बन सकता है जो अल्लाह की जात से मायूस हो, सब वो तो ऐसी हस्ती होती है कि उसके पास जाने वाले जो है वो भी मायूसी खत्म कर बैठते हैं अपने, कुछ तो बात है वली अल्लाह की और कैसे। एक इंसान के अंदर चीज पैदा हो जाए कि अल्लाह की रहमत से मायूसी छोड़ दे, उसी वक्त उसी सेकंड में वो शख्स अल्लाह का वली बन जाता। ये जो अल्लाह की दोस्ती है ना, ये हमारी इन चीजों से नहीं चलती कि इतने कुरान खत्म कर लिए, इतने सजदे कर लिए, रात की तहजीदें पढ़ता है, फिर नहीं। अल्लाह की दोस्ती और खुर्ब का रास्ता कुछ दूसरा ही है, सुभानअल्लाह। अपने दिलों को टटोले हम, वो रास्ता जो रूहानी रास्ता है वो डिफरेंट है, जो अल्लाह को लेके चल अल्लाह करी इंसान को। ये इंसान जिनके पास ये चीजें होंगी, ये कैफियत होती है, वो तो कभी रह ही नहीं सकते पीछे, इसको अल्लाह चुन ले, और यही सबसे बड़ा इम्तहान। तो ये तवक्कल, तवक्कल पैदा करना चाहिए भाई, वरना तो मायूस में हम डूब जाएंगे। बहुत काम शैतान हमारे से करा देगा, हर वक्त मायूस कर देगा, तेरी कार बिक नहीं सकती यार, तुम्हें इस तरह एक एक लम्हे आएगा उसके पास, तेरा ये काम हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसे कर लेना ऐसे हो जाएगा। हाँ, यानी इतने दूर ले जाता है कि कुफ्र और शिर्क से भी दूर करके खुद का दुश्मन बना देता है। नाउम्मीदी, अल्लाह की रहमत से मायूसी, क्या इंसान खुद को मार बैठता है, इसको हम खुदकशी कहते हैं। क्यों करता है, तो अल्लाह से मायूस करके मैं तो खत्म हो गई, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो बस अपने आप को मार ही लेता हूँ। अंदाजा लगाए कि कोई आदमी दूसरा थप्पड़ मारे तो बर्दाश्त करता है आदमी, कभी नहीं करेगा, तुमने मुझे क्यों मारा, लेकिन खुद अपने आप को मार रहा है। कितनी बड़ी सजा अल्लाह पाक ने दी इंसान को कि तुम मुझसे मायूस है, और ये बतदरीज बढ़ता है अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे हम। अल्लाह की मायूसी को तो गुना दर गुना होते होते इंसान इस स्टेज पर पहुंच जाता है। सजाएं चलती हैं ना, ताले की हराम के रास्ते बंद करना चाहते हैं, बुराइयों से बचना चाहते हैं, पाक और साफ जिंदगी चाहते हैं, तो अल्लाह की रहमत की तरफ जाए। अगला सवाल, ये कौन सी दुकान है जहां से हम तवक्कल खरीद लें, कोई तो जहां से हम तवक्कल ले लें, कोई जानते हैं, मैं भी चलूँ आपके साथ, कहां से आएगा तवक्कल। मैंने आपसे बात की, तवक्कल आ गया, जुम्मे में मौलाना साहब बहुत बातें करते हैं, सब तो वो सब वही बन गए, ये इंफॉर्मेशन देते हैं उलमा कराम, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कर्म करते हैं, उनका बड़ा फजल है, हादिस से रानों से हमें समझाते हैं। इसका मतलब ये नहीं उन्होंने कह दिया कि बस हो गया, नहीं, वो तो हमें फर्स्ट स्टेप पे लेकर आते हैं, उसके बाद कहते हैं इसको हासिल करो दूसरे तरीके से, इसको जरा इख्तियार करो। हम ये समझ बैठते हैं कि बस हम ये तकरीर होती इंस्पायर कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि देखो ये है, ऐसे है, ऐसे है, बहुत बड़ा आसान है ग्राम का, अलहमदुल्ला हम तक ये बातें पहुंचाते हैं, जिंदगी लगाई इन्होंने अपनी चीज दिंगी लगाई ना कुरान हदीस से पढ़ के कि हम तक पाक में पहुंचते हैं, इसी वजह से अल्लाह ने को बहुत बड़ा दर्जा दिया। लेकिन इस पर इक्तफा ना करें, वो हमें पैगाम देने की है, अब इसको क्या करना चाहिए, इस मुकाम को हासिल करो। मैंने जो आपसे अर्ज की है, मैं तो बहुत नाचीज आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बड़े बड़े पाक साफ नेक इंसान बैठे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग मेरे सामने हैं,
मुझे क्या जरूरत हो सकती है, मैं आपको निश्चित करूँ कहता हूँ। मैंने आपको पहले इसलिए एक्सक्यूज किया था कि मैं ये इस मजमू में मैं फ़ायदा इसलिए उठाता हूँ आने का कि मैं अपनी असलाह चाहता हूँ, मैं अपने आप झंझोड़ता हूँ कि तेरे में क्या है। तो आज मैं चाहता हूँ कि मुझमें तक तवक्कुल आए, ना मैं गुनाह से बच नहीं सकता। इंसान कमज़ोर है, आपकी शैतान साथ एक लम्हे आपको लपेट लेगा, फौरन मायूस कर देता आपको कि नहीं अल्लाह ताला यहाँ कुछ ही कर ही नहीं सकता, तेरी दुआ कबूल हुई नहीं, तेरा तो हो ही नहीं सकता, तो मामला नहीं। ये रास्ता ले लेना इख्तियार कर, दूसरा रास्ता स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उस पर चला देगा। तो बचने के लिए क्या चाहिए हमें, अब कैसे आए तवक्कुल, जब आगे चले या ना चले, चलना चाहिए। रास्ता में बताऊंगा आप हमें एक्सेप्ट करेंगे उसको, हाथ खड़ा करेंगे कौन करने वाला है। चलिए ठीक, बात तो चुप हो कि आगे चले। अब ये सुन के आप भी अपने घर से जाए, मैं भी चल जाए, फायदा क्या होगा, वो भी फायदा होगा। अच्छा तवक्कल, तवक्कल आएगा जिसकी क्या जगह बनाई है, पाप किस जगह पे आते तो भाई की जवानी चीजें जितनी भी हैं। अल्लाह सुबहान तआला ने इन रूहानी जगह चीज़ों के लिए एक जगह मुकर्र की है जहाँ की उतरती हैं, जहाँ आती हैं। वो जगह क्या है, दिल है इंसान। तवक्कल कहाँ आएगा, पेट में नहीं आएगा, हाथ में नहीं आएगा, कहाँ आएगा, दिल में आएगा। तवक्कल की जगह जो कौन सी है, वो दिल है, दिल में आता है तवक्कल। अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई जगह नहीं इसके आने की। पहली बात तो समझ, दिल में आना है भाई, आएगा कैसे, अल्लाह ने उसको जरिया बताया, बहुत बेहतरीन जरिया है, बहुत बेहतरीन जरिया है। अल्लाह साहबा करें वाकई, कोई देहाती आता था, कोई इंसान आता था, नबी करीम की सोबत में चंद लम्हों के लिए बैठता था, ईमान लाता था। उस शख्स का मुकाम पता क्या होता था, अल्लाह को कि क्यामत तक कोई इंसान उसके पांव की खाक की खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। दुनिया के तमाम मौलिया अल्लाह की तरफ खड़ी कर दो, सबर नहीं कर सकते उसकी बात, क्योंकि पहली पहली जियारत में उस शख्स को मर्तबा एहसान मिल जाता था। पहली पहली जियारत मर्तबा एहसान पे वो है ना, बात करते उसकी इबादत कर रहा होता था कि वो अल्लाह को देख रहा। पहली झलक में नबी के समान था, आपको शानी ऐसी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारी जैसी मदारिश थी अल्हम्दुलिल्लाह, ये रूहानियत की पूरी व्यवस्थ हो जाती है उसके कल्ब के अंदर, हो जाते हैं और दुनिया का अजीब इंसान बन जाता है, जिसको कहते हैं सहाबा कराम, हर चीज में आ जाती है। तब वो क्या क्या है, हम यती भी चीज है, वही सिलसिला चल रहा है। अल्लाह पाक कहते हैं सिलसिले को मैंने चलाना है। तो ये तवक्कल का मामला यह है कि जब कोई इंसान किसी कामिल औलिया के सामने जाके बैठता है, तमाम चीजें उसके अंदर सरियत कर जाती है, जिसके अंदर मुनक्कस कर जाती है। सादिकीन, आज भी और क़यामत तक भी ये काम चलेगा कि जब कोई सिद्क नियत के साथ किसी अल्लाह के वली के पास जाके बैठता है, इस नियत से मैं अपनी इस्लाह कराना चाहता हूं, मैं तमाम रूहानी बीमारियों को दूर करके, बीमारियों को खत्म करके रूहानी शिफा लेना चाहता हूं, अपने कल्ब के अंदर बनाना चाहता हूं, नीयत पक्की, और इस दुनिया को तर्क करना चाहता हूं, छोड़ना चाहता हूं, उसके बाद ये एक है, किसी कामिन वली के साथ के सोबत को अख्तियार करें इंसान, अपने हाथ उसके हाथ में ले लें अल्लाह की फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह सोबत इतनी बाबरकत होगी उसकी, तो उसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह नीयत सही हो। सोबत में तो क्या है, सोबत ये होता है कि देख सुंदर है ना, आप नहाना चाहते हैं समुद्र में तो कैसे नहाएंगे, समुद्र गए हम नहाना चाहते तो आप जंप मार, मैंने छलांग मार, मैं भी पाक हूं तुझे भी पाक कर दूंगा। जब किसी औली अल्लाह किसी वली के पास आदमी जाए तो हाथ बांध के ना खड़ा हो जाए, बस नहीं जंप मार उसकी जात में, जो आप कहेंगे वो होगा वही, सुभान, जिस रास्ते को आप मुंतखब करेंगे जाना पूरे यकीन के साथ उसी रास्ते पर,
तय पे नहीं चलती हूँ, फिर ये नहीं चलता कि ये क्यों फना क्यों कहा नहीं चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस यकीन पक्का है कि रास्ता ये बंदा ऐसा है कि जब शरीयत पे लेके चलेगा अल्लाह के रास्ते पे पक्का करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ पड़ो और जंप मारो उसके अंदर, डूब जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं दुनिया के तो बड़े बड़े शुकमार तो काबरी की हिस्ट्री यही है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को उठा कर देख लो, गए थे या नहीं गए थे हाजी अब्दुल्ला मक्की रहमतुल्लाह के पास? सब गए थे नहीं गए थे? कैसी कैसी शख्सियत थी, कितनी कितनी किताबें थी, इल्मी क्या उरूज थे उन लोगों के। उसके बाद इल्म नहीं सीखा, नहीं वो तो कहते थे कि हमने आप शेख उनसे मिलने के बाद हम आलिम बने हैं। सुभान अल्लाह, तो बंग दौर कहते थे हम पहले आलिम नहीं थे, लेकिन दुनिया को पहले आलिम मानती थी, ऐसे ही ना बोला, उससे पहले आलिम मानते थे, बंग बड़े जबरदस्त आलिम थे, ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन खुद को कहते हैं कि नहीं उस वक्त हमारे पास इल्म था, इल्म तो अब मिला है, जाऊँ इस शख्स के पास उठ के आए तब हम आलिम बने हैं, अब पता चल रहा क्या है। तो मेरे भाई ये वक्त क्यों जाया करते हैं? देखो हम गुनाहों से नहीं बच सकेंगे जब तक कोशिश नहीं करें। हर चीज के लिए कोई कोशिश अल्लाह ने मुकर्रर की है। एक अच्छी जिंदगी आखिरत चाहने के लिए लाजिम है किसी शख्स किसी अल्लाह वाले के सबूत को अख्तियार करे। और जिस चीज से हमारी जिंदगी बनती है वो वाफर मकदार में अल्लाह तक क्यामत तक देगा। कहीं आप चले जाएं वह चीज आपको वहां मिल जाएगी, अल्लाह वह कभी नहीं करेगा। देने वाली जात किसकी है? कुछ भी नहीं है। बंदे पहुंचे, आप ये देख रहे हैं यहां वेस्टर्न दुनिया में जो लोग पहुंचना शुरू हुए, यहां क्या था? कुछ भी नहीं था सिवाय सुस्तान था। यहां का मस्जिद क्या चीज क्या चीज। लेकिन जब अल्लाह देखा कि मेरे बंदे पहुंचने वाले हैं, जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान वाले लोग पहुंचने वाले हैं, तो अल्लाह ने देखी इस मस्जिद को सोच सकते मस्जिद बन जाएगी ऐसी बड़ी, बड़े बड़े दूर से हिंदुस्तान से पाकिस्तान से बांग्लादेश से अपनी कहां दुनिया के लोग उलमा कराम आएंगे और कितनी बड़ी बड़ी हस्ती आएंगी और दीन फैलाएंगी। क्या कोई सोच सकता था इस मुल्क के अंदर चार खानकाएं बन जाएंगी, नक्शबंदी खानकाएं सुबहान हजरत का फैस। 30-40 साल पहले मुझे हजरत कहा कि जाओ खानका बनाओ, खानका यूरोप की सबसे बड़ी पहली खानका हजरत की बरकत से बन गई और दस्तर गांव चल पड़ा, जिक्र था शुरू हो गया। आप देखिए तो ये तो अल्लाह का वादा है कि दीन को कौन मिटा सकता है, असल दीन को कौन मिटा सकता है, सवाल ही पैदा। अल्लाह ने फैलाना फैलता रहेगा ये तो, और फैलाने के जो वादा किए तो नायब रसूल होंगे, वो कौन होंगे? वो औलिया कराम होंगे, उलमाए हक होंगे जो फैलाएंगे इसको। उनको भजाएगा, उनके लिए अड्डे बनाएगा, उनके खाने का इंतजाम करेगा, उनको गाड़ियां दिलाएगा, उनको मजे कराएगा, उनके लिए पूरा एहतमाम होगा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज का। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करो, सुभान अल्लाह। अरे भाई ये तो ये नहीं हम कोई बहाना करेंगे, लेकिन अल्लाह के सामने हमने तो ये गुनाह इसलिए कर लिया था, हमने तो हराम इसलिए खा लिया था, फला खा लिया था। नहीं, जहां भेजेगा देखने इससे ज्यादा रास्ते खुले हुए नहीं गलत कामों के, मैं आपको बता रहा हूं चप्पे चप्पे पे आप गलत काम मिलेंगे, लेकिन बचने के रास्ते बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहां से आपको कुतुब गौस बनते नजर आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं वल्लाही कसम खा के कहता हूं। यहां से औरतें राबिया बसरी बनती नजर आएंगी आपको, नंगी फिरने वाली औरतें खुद बानकाब, जिक्र उनके सीने होंगे, आशिक रसूल औरतें यहां से पैदा होंगी और हो रही हैं। लग दे दें, ये नहीं कि आज आप किसी को देख रहे हो नंगा फिर रहे या जनाब पूरी हालत में तो हम उस पर हंस रहे हैं। सुभान अल्लाह, इसी अल्लाह वाले का हाथ पकड़ा नहीं पर काम पकड़ने का हाथ कर पूछा, मांग के लिए दुआ, तू दुआ मांग, मैं भी सारे माफ करता हूं और रही हूं इनको बनाता हूं मैं वली अल्लाह। ये आयत खत्म होगी, थोड़ा सा हम जहाज में बैठ के यहां तो खत्म होंगे। मुतमिन हो गए हम गुनाहों पर, बिल्कुल मायूस है हम अल्लाह ताला से, जादू हर गुनाह करने वाला मायूस है, उसमें अल्लाह है क्या, हमारा तो बेईमानी से काम चलेगा जनाब, घर हमारा चलेगा तो इसी से चलेगा जनाब, ना हमारा घर नहीं चल सकता जब तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तब तक मैं फ्रॉड नहीं करूंगा, तब तक मैं हराम नहीं खाऊंगा, मेरा घर कहां से चल रहा है? अल्लाह तो है ही नहीं, और जाकर सजदे भी कर یہ توکل ہے, اللہ سے مایوسی نہیں ہے. جی بتائیں, یہ کون سے عاشق رسول ہیں, یہ کون سے ہم اللہ کو جاننے والے لوگ ہیں؟ نہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں. ہم تو خود کہہ رہے ہیں مانگو درجی, ہمارا گھر چل ہی نہیں سکتا جب تک حرام نہیں کھائیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, فراڈ نہیں کریں گے, غلط کام نہیں کریں گے, ہمارا گھر کہاں چل سکتا ہے جناب؟ آپ کی عمرے پہ بھی جا رہے ہیں انہیں پیسوں سے. یہ کیا ہے؟ اللہ ہی کیا ہے سوچیں آپ. اور صرف اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے ایک چیز چاہیے, ایک کسی اللہ والے کے در پہ پہنچ جائے. کیا بوٹی دے گا آپ کو وہ؟ اس کے پاس ایک بوٹی ہے, جنت کی بوٹی, وہ سنگائے گا آپ کو اللہ کے فضل سے. میرے شیخ نے مجھے وہ سنگائی تھی الحمدللہ. وہ ایک بوٹی سنگاتا ہے, جو بوٹی اس نے وہ سنگا دی الحمدللہ, سینے کھول دیتے ہیں سارے. اور ہر اللہ کے ولی کے پاس وہ ایک بوٹی ہوتی ہے, دوسری چیز ہوتی ہی نہیں. کچھ دوسرا کام نہیں کرتا, کوئی واس نہیں کرتا, کوئی اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں, بس وہ بوٹی سنگاتا ہے. وہ کون سی بوٹی ہے؟ بس اللہ کثیر لعلکم تفلحون. پتا ہے کہ جو کام بننا ہے کس سے بننا ہے؟ اونچا بولے ہاں, بس کچھ نہیں کہتا کہ کوئی سنا کر. میرے شیخ نے مجھے کہا تو کچھ بھی نہ کر, میں تجھے کچھ نہیں کہتا گناہ چھوڑنے کی, اب میں تجھے ذکر ہے کل بھی دیتا ہوں, ذکر شروع کر دوں. اللہ اللہ کا وعدہ ہے جو ذکر کرے گا وہ فلا پائے گا. سبحان اللہ. تو ذکر میں وہ خاصیت رکھی ہے کہ ہر غم کو مٹاتا جاتا ہے, ہر گناہ کو مٹاتا جاتا ہے. مایوسی کی جگہ توکل لے آتا ہے, سبحان اللہ. ریا کی جگہ اخلاص لے آتا ہے, چھوٹ کی جگہ سچ لے آتا ہے, فراڈ کی جگہ دیانتداری لے آتا ہے, بیماری کی جگہ امانت لے آتا ہے. ہے یا نہیں؟ بس بس وہ بوٹی سنگائی نہیں شیخ نے, دو چیزیں مل جاتی ہیں, نور اللہ نور. اس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملتا ہے؟ صحبت ملتی ہے, اس کے ساتھ اللہ کا ذکر ملتا ہے. کرنا چاہیے بھائی, کام نہیں کرنا چاہیے. چلیں لائٹن پکڑے, ٹارچ پکڑے ہیں, کون سی ٹارچ پکڑے ہیں جسے آپ تلاش کریں گے؟ وہ ٹارچ تو ہونی چاہیے نا, بتاؤ آپ کون سی ٹارچ ہے؟ ہاں, ایمان کی ٹارچ ہے. بڑی روشنی ہے اس کی, سبحان اللہ. ایمان کی روشنی بہت زبردست ہے. اس ٹارچ کو استعمال کریں, دو رکعت نفل پڑھیں, اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم فرما, کس تیرے دوست سے ملنا چاہتا ہوں, مجھے راستہ دے اس طرح, جس سے میں مطمئن ہو جاؤں کہ یہ مجھے راستہ دکھا دے. اللہ والوں کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے, ان کے کوئی فرشتہ آپ کو نہیں یاد نظر آتے. عام انسان ہوتے, انسانوں کے نہیں ہوتے, آپ جس پہ تیز چلتے ہوتے, وہ انسانی فرشتہ نہیں کر سکتے, فرشتوں کو نہیں بنانا. تو کیسے تلاش کریں اللہ والے کا؟ جو اللہ نے آپ کو ٹارچ دی اس سے تلاش کریں, سبحان اللہ, اس کے استعمال میں لیں. سیل ڈال, کس چیز کا سیل ڈالنا ہے ہم اس ٹارچ کے اندر؟ اللہ کی مدد کر, کہ اللہ مدد کر تو ہماری. سیل میں نے ڈال دی اس میں, اب تو اس روشنی سے مجھے اللہ والا دکھا دے میں کہاں جاؤں. اب یہ آپ کی قسمت ہے, آپ کو مینچسٹر میں دکھاتا ہے, سورت میں دکھاتا ہے, بروچ میں دکھاتا ہے, ڈھاکے میں دکھاتا ہے, وہاں آپ کو جانا پڑے گا. میں نے مینچسٹر میں بیٹھ کر جس وقت میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو میں نے یہ دعا کر لی. کس نے مجھے بتائی؟ میں نے سچے دل سے دعا کر لی. مجھے یاد آج تک وہ مصلی بچھایا, جس میں میں کہا یا اللہ تعالیٰ, لوگ کہتے ہیں ولی اللہ ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, میری نمازیں صحیح نہیں ہیں, مجھے تو کچھ نہیں آ رہا, تو کوئی ہے علیہ اللہ علیہ والے مجھے بھی دکھا دیں. مجھے تو اپنی نظر آ رہے ہیں چلتے پھرتے, کوئی کچھ کرتا ہے, دل نہیں میرا ٹھکرا, تو مجھے دکھا دیں آپ. تو اللہ والوں کو مجھے وہیں دکھانا چاہیے تھا نا. مانگنا کام آپ کا, انتخاب کرنا اس کا کام, قبول کرنا پڑے گا. میں کہا ٹھیک ہے بھائی, اللہ نے کہا چل حجی عمرے کی تیاری کر لے. تو وہ زندگی کا میرا پہلا عمرہ تھا. میں ٹارچ چلانے کی بات کر رہا ہوں, ٹارچ لائیں نا, ملتا کیسے؟ اب میں چل پڑا ہوں, بولے تو عقل بھی ادھر ہی نہیں. پہلا عمرہ تھا زندگی کا, آج سے 50 سال پہلی بات کر رہا ہوں, 50 سال پہلے. اتنا پاگل تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں گئے تو جناب مجھے پتہ نہیں تھا کہ نہ کسی کی مدد مانگی کہ معاف کیسے کرتے ہیں, کتاب پڑھی ہے, وہیں سو گیا. عجیب سفر تھا, بہرحال بڑے واقعات تھے. اللہ نے سے دعا مانگی تھی, اللہ کہا ہاں ملے گا, لیکن ملے گا میری مرضی سے. تو ایسی جگہ مجھے شیخ دے دیا مدینہ برس نے ملا, تو کہاں एक शहर शहर का गांव यानी पाकिस्तान, पाकिस्तान में कराची से मुझे जाना पड़ना, मैं तो कराची जाता था, कराची से फिर मुझे आगे जाना पंजाब, पंजाब में फिर डेरा जहान, वहाँ भी डेरा जहान को सुनाना आसा था कि मुल्तान से दरिया सिंध है, बहुत बड़ा दरिया है, उसको अबूर करना पड़ता था, जहाज जाता था पानी का, उससे बैठना, उससे बैठने के बाद फिर आगे फिर बसों पर सफर करना, फिर शहर में पहुंचना डेरा जहान, वहां भी नहीं, उससे आगे भी गदाई शरीफ, कच्ची जगह बिल्कुल कीचड़ और तना, वहां जानवर पूरी है, सुबह कुलवान जाऊँ उस बस्ती के भी रंग लगा दिए, वहां पहुंचे तो एक दरवेश बैठा था जिसका नाम था हजरत अली मुर्तजा अलैह, वल्लाह बस पहली दफा नजर पड़ी हजरत, आम वही ये नहीं, वो पीर वाला चक्कर नहीं था, एक आम आदमी से बैठा, ये धोती पहनी है, साफा पहनी है, चादर हो गई, एक सवाल मैं बता रहा हूँ आपको, जब टार्च मारते हैं तो अल्लाह कैसे मदद करता है, सब कुछ भूल गए, कहाँ बाबा मुझे पूछते अपनी जबान में सराय कर, कौन है सर, किधर से, मैं डेरा से, क्या चाहते हो, क्या चाहिए, अब ये वक्त होता है दुनिया में बदलने का, देखिए ये वक्त होता है इंसान का होश में रहे कि हमने अल्लाह को पाना है, ड्रामा नहीं करना चाहिए, मुझे अखला बहुत बात है साहब, दुनिया छोड़नी और अल्लाह को पाना है, और ये मैं उस वक्त बात कह रहा हूं जब मैं दुनिया के अरूज पर था, दुनिया के अरूज पर था, दौलत आगे पीछे, माल गाड़ियां सब कुछ, ऊंचा डिग्रियां, बड़े बड़े जॉब मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं मुझसे अल्लाह क्या करवा रहा है, मैं दुआ जो करती थी, मांगा जो था अल्लाह को, मैं दुनिया छोड़ना चाहता हूं, छोड़ सकते को दुनिया को, एक डॉक्टर जिसने की वो छोड़ देगा, लेकिन यहां अल्लाह छुड़वा भी देते अल्लाह तो भाई तो हंस पड़े, कहते पहला जवान देखा है जो ये मांगने आया मुझसे चीज, हंस के कहा है, कहता इंशाल्लाह तू जिक्र करेगा भी और कराएगा भी, यानी उसी वक्त खिलाफत दे दी उस शेख ने, अंदाजा लगाए क्या पावर होगी उसकी, और निगाह किधर थी, पूरे यूरोप पर निगाह थी उनकी, अंदाजा लगा ये जिक्र होगा वहां, करेगा भी कराएगा भी, तू किससे खत्म देगा, बैठ जा मुझे बातचीत, मेरे भाई टार्च में टार्च डालो, वक्त जाए ना करो, खुदा की कसम मौत एक ऐसा जबरदस्त पंजा है, ऐसा पंजा है कि फिर उससे कुछ नहीं बन सकेगा, हराम 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 पूरे जिस्म में हमारे क्या हुआ है, गुनाह 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 पूरे जिस्म में गए, हमारा कुरान छूटा, हमारे सजदे छूटे, हमारी नमाजें छूटी, हमारा हर कुछ छूटा, सच्चे के साथ में लो, सच्चे हो जाओ, मत धोखा दें अपनी जमीनों को, अपनी चीजों को, सादिक हो जाओ अल्लाह के सामने, हर वक्त बिल्कुल नंगा खड़ो चाहिए इंसान को अल्लाह के दरबार में, कि कुछ भी नहीं दस्त मौला मेरी कोई इबादत नहीं है, मैं गुनाहों में डूबा हूं, मुझे बचा जहन्नम की आग से, मुझे बचा जहन्नम की आग से, बहुत सख्त है जहन्नम की आग, जहन्नम तो बहुत बात की बात है, नज़ा का वक्त कितना जबरदस्त आएगा मुझे आप बताएं, कैसे यकीन कर ले आदमी, क्या हमारे वो अमाल हैं कि हम कलमा भी पढ़ सकें, मुझे बताएंगे कैसे अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई है, अल्लाह जिस जान निकल रही हो या तखबत शैतान दल मौत, कि जिस वक्त मेरी जान निकल रही हो तो शैतान के हब से मुझे बचा लेना, पूरा वहां पर मामला होगा इंसान के साथ मौत के वक्त, दुनिया तो देख रही है इंसान पड़ा है अलकाबात के साथ पड़ा है, बड़े बड़े अलकाब है, भगवान तो कुछ कहते हैं चख मजा, बड़ा ऊंचा बनता था ना अजीज करीम था ना, चख मजा देख मजा क्या होता है, दुनिया की इन बातों पर एतबार ना करें, अपने मानों को देखिए, अपने जांचें कितनी सच्ची है, कसरत से अल्लाह का जिक्र, किसी अल्लाह वाली की सो मस्ट है, ये जो ये काम नहीं कर रहा, ये जो काम नहीं कर रहा वो मुतकब्बिर है, किबर है उसमें, वो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत कुछ, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, पूछे हमारे काबरीन से, हिंदुस्तान से चले थे, अगर उनमें किबर होता तो भी ना चलते, متکبر وہ شخص بھی سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں انف ہوں, میں مجھے بہت کچھ ہوں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں تو اپنا بڑا فٹ ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بچے گا وہ جو اس راستے کو اختیار کرے گا, اپنی نفس کی کمانڈ کسی کے ہاتھ میں دے گا, کنٹرولز کو دے گا. جتنا وقت ہم ضائع کرتے جائیں گے گناہوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے, ایسا نہ ہو کہ قبر کی ہچکی اور آ جائے موت کی ہچکی, ہم سمجھ نہ سکیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, وقت نہ کریں بھائی ضائع, اور اس لائن کو سمجھیں. ذکر مذاق نہیں ہے, مجالس مذاق نہیں ہے, یہ بہت سیریس چیز ہے. اللہ والوں کی تو ایک لمحے کی صحبت بڑی اونچی چیز ہوتی ہے. یہ ایک لمحہ تھا جو اپنے ہاتھ سے ملا, ایک لمحہ تو تھا جو ایک صحابی آ کے ملتا تھا, جو صحابی بنتا تھا نبی پاک ہم سے, وہ ایک لمحہ ہی ہوتا تھا کہ انسان کہاں سے کہاں تبدیل ہو جاتا تھا. یہ سالوں کی بات نہیں ہوتی ہے, بس یقین پکا کر کے کہ مجھے اللہ چاہیے, اس دنیا کو ترک کرنا چھوڑنا ہے, الحمدللہ مایوسی ختم ہو جائے گی اور توکل اندر آ جائے گا. بس توکل آیا نہیں, توکل تو ایسی چیز ہے, میں نے آپ کو مثال بتائی ہے کہ اللہ متوکل کو کبھی چھوڑتے ہی نہیں, بھوکا نہیں چھوڑے گا اس کو, اس کی خواہش کو ایسا پورا کرے گا کہ وہ جہاں دعا کرے گا فوراً وہ چیز اس کے پاس پہنچ جائے گی. میں یہ کتابوں تو پڑھتے ہیں لیکن میں آپ کو تجربے سے یہ باتیں بتا رہا ہوں. الحمدللہ اللہ والی کی صحبت میں یہ چیزیں دیکھیں, یہ چیزیں جوتی بیٹھ کے سیکھے ہی ہم نے دیکھے, یہ نظارہ یہ دیکھتا تھا میں ان کی صحبتوں کہ کمال ہے یار, کیسا کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سن لیتا ہے کہ کہاں سے ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو پورا کر دیتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں تھی, کچھ چیز نہیں تھی, بس انہوں نے اس راستے اختیار کیا, انہوں نے جس چیز کو حاصل کرنا تھا اس راستے اختیار کر لیا, اللہ کا ذکر لیا, کس تو اس کی سب لے لی, اللہ اس کو پار کر دیتا ہے ان شاء اللہ. ہے تو انسان ٹوٹتے پھرتے ٹوٹتے چلتے پھرتے ان شاء اللہ منزل پہنچ ہی جاتا ہے انسان. جب گاڑی میں بیٹھ گیا, ٹرین میں بیٹھ گئے, جب بس میں بیٹھ گئے, تو بے شک کتنے جھٹکے لگے دھکے لگے کچھ بھی ہو کتنی ٹھہرے, پہنچ تو جائیں گے نا ایک دن, بے شک لیٹ ہی پہنچنے والی گاڑی, جب بیٹھیں گے تو پہنچیں گے کیسے. تو یہی ہے, کم سے کم کسی کا ہاتھ پکڑیں, کسی کے پاس بیٹھیں اور پھر فکر نہ کریں, منزل پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, شفیع المرسلین, دعوا یاسین, نبی الامین, اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وازواجه امهات المؤمنین وذریاته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان أشهد يوم القيامة مع الإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نبيين صدقين شهداء وصالحين حسن أولئك رفيقا يا قاضي الحاجات اقضى حاجاتنا يا دافي البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. یہ خاتون نے آپ حضرات سے دعاؤں کے لیے کہا ہے. ان کی ضعیف والدہ کو نمونیا ہو گیا, ہاسپٹل میں داخل ہے اور اچھی خدمت حالت میں نہیں ہے, ان کے لیے خاص دعا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے, اور جو جہاں بیمار ہیں جن عورتوں نے مردوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر حالات فرمائے. تمام ہمارے ساتھیوں کے لیے مصیبتوں میں پریشانی میں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. ربنا
حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انبئهم هما كما ربيانی صغیرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے, یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے, یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. All right.